ओशो अध्यात्म उपनिषद टॉक्स ऑन अध्यात्म उपनिषद गिवन एट मेडिटेशन कैंप माउंट आबू इंडिया डिस्कोर्स नंबर 11।
इस समाधि के समय वृत्तियां केवल आत्मरूप विषय वाली होती हैं, इससे जान नहीं पड़ती, पर समाधि में से उठे हुए साधक की वे उत्थान पाई हुई वृत्तियां स्मरण से अनुमान की जाती है। इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिए जाते हैं, पर इस समाधि द्वारा वे नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध धर्म बढ़ते हैं। उत्तम योगवेत्ता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि वह मेघ की तरह धर्म रूप हजारों धाराओं की वर्षा करती है। इस समाधि द्वारा वासनाओं का समूह पूर्णतः लय को प्राप्त होता है और पुण्य पाप नाम के कर्म का समूह जब जड़ से उखड़ जाता है, तब ये तत्वमसी वाक्य प्रथम परोक्ष ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है और फिर हाथ में रहे आंगना की तरह उपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। At the time of this samadhi, the modes of the mind take form of the self, and therefore they are not felt. But after the meditator has come back from his samadhi, those modes which had disappeared are inferred through memory. In this world, which is without a beginning, one accumulates millions of karma, conditioning from actions. They are all destroyed in this samadhi and inner spontaneous qualities grow. The great knowers of yoga describe this samadhi as dharma megha because like rain, inner spontaneity issues forth its thousand streams. Through this samadhi, the whole crowd of desires become extinct. And when the hordes of karmas known as merit and sins are uprooted, then the great saying, Tattvamasi, thou art that, becomes illumined, first as indirect knowledge, and then as a fruit in hand, it drops and becomes direct knowledge.
श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि इन चार चरणों के संबंध में सुबह हमने बात की। समाधि संसार का अंत और सत्य का प्रारंभ है। समाधि मन की मृत्यु और आत्मा का जन्म। इस ओर से देखें तो समाधि अंतिम चरण है, उस ओर से देखें तो समाधि पहला चरण। श्रवण मन निधिध्यासन इनसे मन शून्य होता चलता है, लीन होता चलता है, समाधि में पूरी तरह लीन हो जाता है। और जहां मन पूरी तरह लीन हो जाता है वहां उसका अनुभव शुरू होता है जो वस्तुतः हम हैं। इस समाधि के संबंध में ये सूत्र है और इस सूत्र में कुछ बहुत गहरी बातें हैं। समाधि के समय वृत्तियां केवल आत्म रूप विषय वाली होती हैं, इससे जान नहीं पड़ती, पर समाधि में से उठे हुए साधक की वे उत्थान पाई हुई वृत्तियां स्मरण से अनुमान की जाती है। ये पहली बात काफी ख्याल से समझ लें, जो साधना में लगे हैं उनके लिए आज नहीं कल काम की होती है। समाधि में कोई अनुभव नहीं होता, सुन के कठिनाई होगी, समाधि में कोई अनुभव हो भी नहीं सकता। और समाधि परम अनुभव भी है, ये विरोधाभासी वक्तव्य है, उल्टा दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ कारण से उल्टा दिखाई पड़ता है। समाधि में परम आनंद का अनुभव होता है, लेकिन समाधि में डूबे हुए साधक को कोई भी पता नहीं चलता, क्योंकि साधक और आनंद एक हो गए होते हैं, पता चलने की दूरी नहीं रहती। हमें पता उन्हीं चीजों का चलता है जिनसे हम भिन्न हैं, अलग हैं, दूर हैं। समाधि में आनंद की जो प्रतीति होती है, जो अनुभव होता है, उसका कोई पता समाधि में नहीं चलता। जब साधक समाधि से वापस लौटता है तब अनुमान करता है कि आनंद होगा, पीछे से स्मरण करता है कि परम आनंद हुआ था, अमृत वर्षा था, जिए थे किसी और ढंग में और जीवन की कोई गहन स्थिति अनुभव की थी। ये पीछे से स्मरण आता है जब मन लौट आता है। इसे हम ऐसा समझे कि श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि ये चार सीढ़ियां, इनसे साधक समाधि के द्वार पर जाके अनुभव करता है। अगर समाधि में ही साधक रह जाए और वापस न लौट सके तो अपने अनुभव को कभी भी न कर सकेगा। अपने अनुभव को बताने का फिर कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो साधक समाधि को उपलब्ध हो जाता है वो वही का वही वापस कभी नहीं लौटता, नया ही होकर लौटता है। लौटकर सारे संबंध उसके मन से बदल जाते हैं, लेकिन लौटता है मन में। पहले जब मन में था तो गुलाम था मन का, कोई मालिकियत न थी अपनी, मन जो चाहता था करा लेता था, मन जो बताता था वही मानना पड़ता था, मन जहां दौड़ाता था वही दौड़ना पड़ता था, मन की गुलामी थी, मन के हाथ में लगाम थी आत्मा की। समाधि के द्वार से लौटता है साधक जब वापस मन में, तो मालिक होकर लौटता है, लगाम उसकी अब अपने हाथ में होती है। अब मन को जहां ले जाना चाहता है वहां ले जाता है, नहीं ले जाना चाहता तो नहीं ले जाता है, चलाना चाहता है तो चलाता है, नहीं चलाना चाहता तो नहीं चलाता है। मन की अब अपनी कोई सामर्थ्य नहीं रह जाती। लेकिन समाधि को उपलब्ध साधक जब मन में लौटता है मालिक होकर, तभी वो स्मरण कर सकता है, क्योंकि स्मरण मन की क्षमता है। तभी वो पीछे लौट के देख सकता है मन के द्वारा कि क्या हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि मन केवल संसार की ही घटनाओं को अंकित नहीं करता है, जब साधक समाधि में पहुंचता है और जो घट रहा होता है वो भी मन अंकित करता है। मन दोहरा दर्पण है, उसमें बाहर का जगत भी प्रतिबिंबित होता है, उसमें भीतर का जगत भी प्रतिबिंबित होता है। तो जब साधक लौटता है मन में, तभी अनुभव कर पाता है कि क्या घटा। तो फिर वो तीन सीढ़ियों से लौटे तो ही अभिव्यक्ति कर सकता है। पहली सीढ़ी होगी साधक की समाधि से लौटते वक्त निधिध्यासन। निधिध्यासन में उसको अनुभव होना शुरू होगा समाधि में जो उसने जाना था सूक्ष्म में, ज्ञान तल में, अपने अंत अत्यंत केंद्र पर, वो निधिध्यासन की सीढ़ी पर आकर उसको अपने आचरण में झलकता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो पैर उठाएगा तो पैर पुराना नहीं मालूम पड़ेगा, इस पैर में कोई नृत्य की ध्वनि समा गई। वो आंख उठा के देखेगा तो ये पुरानी आंख नहीं मालूम पड़ेगी, ताजी हो गई जैसे सुबह की ओस। उठेगा तो निर्भर मालूम पड़ेगा, जैसे आकाश में उड़ सकता है। भोजन करेगा तो दिखाई पड़ेगा कि भोजन शरीर में जा रहा है और मैंने कभी भी भोजन नहीं किया है। अब वो जो कुछ भी करेगा, समाधि से लौटा हुआ साधक निधिध्यासन की पहली सीढ़ी पर अपने आचरण में समाधि का प्रतिफलन देखेगा, सब जगह उसका आचरण दूसरा हो जाएगा। वो कल जो आदमी था मर गया, वो जो समाधि के पहले निधिध्यासन की सीमा में खड़ा आदमी था ये वही नहीं है, सीढ़ी वही है, आदमी उतरता हुआ दूसरा है। ये कुछ जान कर लौटा है और ऐसी बात जान कर लौटा है कि इसका पूरा जीवन रूपांतरित हो गया। वो जानने में पुराना मर गया और नए का जन्म हो गया। निधिध्यासन में उसे झलक दिखाई पड़ेगी, जो समाधि में घटा है रस जो बहा है भीतर, वो उसके रोए रोए व्यवहार में सब तरफ बहता हुआ मालूम पड़ेगा। महाकाश्य बुद्ध से बार बार जाके पूछता था कब होगी समाधि, तो बुद्ध कहते थे तू फिक्र मत कर, मुझसे पूछने में आना पड़ेगा, जब हो जाएगी तो तू पहचान लेगा। और तू ही क्यों पहचान लेगा, जो भी तुझे देखेंगे वे भी पहचान लेंगे अगर उनके पास थोड़ी सी भी आंख है। क्योंकि जब भीतर वो क्रांति घटती है तो उसकी किरणें तंत्रांग सभी को पार करके बाहर आ जाती। निधिध्यासन की सीढ़ी पर साधक को पता चलेगा कि मैं दूसरा हो गया, मैं नया हूं, मेरा दूसरा जन्म हो गया। साधक को पता चलेगा कि जो मैं गया था समाधि में वही लौटा नहीं, कोई और गया था, कोई और लौटा। निधिध्यासन से नीचे है मन। जब साधक निधिध्यासन से और नीचे उतरेगा मन में तो मनन का क्षण आएगा। अब साधक सोच सकेगा क्या हुआ, अब वो लौट के विचार कर सकेगा क्या हुआ, क्या मैंने देखा, क्या मैंने जाना, क्या मैं जिया। अब वो विचार में, शब्द में, प्रत्यय में अनुभव को बांधने की कोशिश करेगा। जो लोग मनन की सीढ़ी पर आके अनुभव को बांध सके हैं उनसे ही निकले हैं वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान। बहुत लोग समाधि तक गए लेकिन जो जाना है उसे मनन तक वापस लौटाना बड़ा कठिन काम। ध्यान रखना, पहली यात्रा इतनी कठिन नहीं थी जो हमें बहुत कठिन मालूम पड़ रही है। इस दूसरी यात्रा से तुलना करें तो पहली यात्रा बहुत सरल थी, ये दूसरी यात्रा अति कठिन है। लाखों लोग समाधि तक पहुंचते हैं, उनमें से कुछ थोड़े से लोग वापस निधिध्यासन में खड़े हो पाते, उनमें से भी कुछ थोड़े से लोग मनन तक उतर पाते और उनमें से भी बहुत थोड़े लोग पहली सीढ़ी जिसको हम श्रवण कहते हैं उसका नाम लौटते वक्त बदल जाता है। वो मैं आपसे बात करूं। हजारों लोग पहुंचते हैं समाधि तक, एकाध आदमी बुद्ध हो पाता है। समाधि तो हजारों लोगों को लगती है, एकाध आदमी बुद्ध हो पाता है। बुद्ध का मतलब ये है कि जो वापस उन चार सीढ़ियों को उतर के जो जाना है उसने जगत को दे पाता है। मनन का अर्थ है लौटते वक्त विचार में बांधना उसको जो निर्विचार है। इस जगत में असंभव से असंभव घटना यही है, जो नहीं बोला जा सकता, नहीं सोचा जा सकता, उसे शब्द की सीमा में रखना, बांधना। आप भी देखते हैं सुबह का सूरज उगता है, कभी कोई चित्रकार कभी उस उगते सूरज को पकड़ पाता है। सूरज को पकड़ लेना बहुत कठिन नहीं है, बहुत से चित्रकार बना लेंगे सूरज को, लेकिन उगते सूरज को पकड़ना कठिन है। वो जो उगने की घटना है, वो जो गुण है विकास का, वो जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ है, वो भी चित्र में अंकित हो जाए और चित्र देख के ऐसा लगे कि सूरज अब बढ़ा आगे, अब उगा। वृक्ष को पकड़ लेना कठिन नहीं है, लेकिन जीवंतता को पकड़ लेना कठिन है। ऐसा लगे कि पत्ते अब हिल जाएंगे हवा का जरा सा झोंका और फूल झड़ जाएंगे, वो बहुत कठिन। और वही फर्क है फोटोग्राफी में और पेंटिंग में। फोटोग्राफी कितना ही पकड़ ले, मुर्दा ही पकड़ पाती। कभी कोई पिकासो, कोई वान गाग, कोई सीजा पकड़ पाता है वो जो जीवंतता है उसको। मगर सूरज, पौधे, फूल आम जीवन के अनुभव है, इन्हें पकड़ा जा सकता है। समाधि असाधारण अनुभव है, करोड़ों करोड़ों में कभी एकाध को होता है, और वहां जो होता है सारी इंद्रियां असमर्थ हो जाती हैं खबर देने में। कान वहां सुनते नहीं, आंखें वहां देख नहीं सकती, हाथ वहां छू नहीं सकते, और अनुभव होता है अपरसीम, विराट जैसे टूट पड़े आपके छप्पर पर, सारा आकाश आ जाए आपके आंगन में, तो जैसी मुसीबत हो जाए और कुछ समझना पड़े, वैसा समाधि के क्षण में होता है। छोटा सा चेतना का अपना घेरा, उसमें सारा सागर उतर जाता है। कबीर ने कहा है कि पहले तो मैं समझा था कि बूंद सागर में गिर गई, जब होश आया तब पाया कि बात उल्टी हुई है, सागर बूंद में गिर गया। तो कबीर ने कहा है कि पहले तो सोचे थे कि कुछ ना कुछ बता ही देंगे लौट कर, वो भी कठिन मालूम पड़ा था। बूंद जब सागर में गिर जाएगी तो लौटेगी कैसे, वो भी कठिन मालूम पड़ा था, कठिन है ही। कबीर का वचन है, हेरत हेरत है सुखी रहया कबीर हिराई, बूंद समान समुद्र में सोकत हेरी जाए। वो जो गिर गई बूंद समुद्र में, अब उसे कैसे बाहर निकाले ताकि वो खबर दे सके कि क्या हुआ। ये तो कठिन था ही, लेकिन कबीर ने बाद में दूसरी पंक्तियां लिखी और पहली पंक्तियों को रद्द कर दिया और कहा कि भूल हो गई, जल्दी में अनुभव नया था, ठीक से समझ ना पाए क्या हुआ, आदत पुरानी थी उसकी वजह से उल्टा दिखाई पड़ गया। दूसरी पंक्तियां लिखी, हेरत थेरत है सखी रहा कबीर हेराई, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। वो समुद्र जो है वो बूंद में समा गया है, बूंद को तो किसी तरह खोज भी लेते समुद्र में गिर गई थी, तो ये उल्टा हो गया है, समुद्र पूरा का पूरा आके बूंद में गिर गया है। अब इस बूंद को हम खोजने भी जाएं तो कहां जाएं, इस बूंद का आप कोई पता नहीं चल सकता। तो समाधि के क्षण में जो जाना गया है, संसार में जो हमने जाना है, उसको पकड़ने के सारे उपकरण व्यर्थ हो जाते, हम ही व्यर्थ हो जाते, हमारा होना ही बिखर जाता है, और कोई बड़ा होना जिसकी कोई सीमा नहीं हम पर टूट पड़ता है आकस्मिक, मर जाते हैं हम। समाधि महामृत्यु है, मृत्यु से बड़ी, क्योंकि मृत्यु में तो मरती है केवल देह, मन बचा रह जाता है। समाधि में मर जाता है मन, पहली दफे हमारा सारा संबंध मन से टूट जाता है, पहली दफा हम मन के सारे धागों से विच्छिन्न और अलग हो जाते हैं, और हमारा सारा ज्ञान मन का था, इसलिए पहली दफा समाधि में हम परम अज्ञानी होके खड़े होते हैं। इसे फिर से दोहरा दूं, समाधि में हमारा ज्ञान काम नहीं आता, क्योंकि ज्ञान सब सीखा था मन ने, वो मन रह गया बहुत पीछे बहुत दूर, हम निकल गए मन से आगे। जो जानता था वो साथी नहीं है वहां, जो सब बातें समझता था, शब्द का सिद्धांत का जिसे बोध था, शास्त्र जिसे रच पच गए थे, वो बहुत पीछे छूट गया। वस्त्र ही नहीं छूट जाते, शरीर ही नहीं छूट जाता, मन छूट जाता है, जो हमारा गहरा सा गहरा अनुभव है वो सब पीछे पड़ा रह गया। मन से उछाल लगाकर साधक द्वार पर खड़ा हो गया समाधि के, अब जानने का उसके पास कुछ उपाय नहीं। समाधि के द्वार पर जो भी खड़ा होता है वो परम अज्ञानी की तरह खड़ा हो जाता है, परम अज्ञानी की तरह, कुछ भी जानने का उपाय नहीं, जानने की व्यवस्था नहीं, जानने के साधन नहीं, सिर्फ जानना मात्र खड़ा रह जाता है। फिर लौट के खबर देना बड़ी मुश्किल है, कौन खबर दे, कौन खबर लाए, लेकिन खबर दी गई है। कुछ लोगों ने अथक चेष्टा की है, वे ही परम कारुणिक हैं इस जगत में, जिन्होंने समाधि के द्वार से लौट कर खबर दी। क्यों? क्योंकि समाधि से लौटने का भी भाव नहीं उठता है। समाधि से लौटना ऐसे ही है जैसे आप जो चाहते थे वो मिल गया, सब इच्छा पूरी हो गई, हलने डुलने का भी कोई कारण न रहा, गति का कोई सवाल न रहा, वहां से लौटना। कहते हैं बुद्ध को समाधि हुई तो 7 दिन तक वो नहीं लौटे, बड़ी मीठी कथा है। कथा है कि सारे देवता उनके चरणों में इकट्ठे हो गए, और इंद्र रोने लगा और ब्रह्मा ने चरणों पर सिर पटका और कहा कि ऐसा मत करें, क्योंकि हम देवता भी तरसते हैं उस बात के लिए जो समाधि को जानने वाला लौट कर देता है। और कितने जन्मों से कितने कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हो जाए बुद्ध, लौट के खबर दे। लौट के बोले, बताए जो जाना हो। आप चुप ना रहे, आप बोले, लेकिन बुद्ध ने कहा बोलने वाला नहीं रहा, बोलने की कोई इच्छा नहीं रही, और फिर जो देखा है वो बोला जा सकता है ये खुद ही भरोसा नहीं आता, तो सुनने वाले क्या समझ सकेंगे। देवता नहीं माने तो बुद्ध ने कहा कि नहीं मानते हो तो मैं कहूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ये बातें जो मैं किसी से कहूंगा अगर जानने के पहले मुझसे कोई कहता तो मैं नहीं समझता, तो कोई क्या समझेगा। और फिर बुद्ध ने कहा इस अनुभव से ये भी अनुभव आ गया है कि जो मेरी बात को समझ सकेंगे वो मेरे बिना भी वहां पहुंच सकते हैं, और जो मेरी बात नहीं समझ सकेंगे उनके सामने सिर धुनने से कुछ बहुत प्रयोजन नहीं। लेकिन देवताओं ने एक बड़ी मीठी दलील दी, और उन्होंने कहा हम जानते हैं ये बात सच है कि जो लोग समझ सकेंगे वे वही लोग हैं जो किनारे पर ही खड़े हैं, जो आपकी आवाज सुन ले, एक कदम का फासला है, वे आपके बिना भी किसी न किसी तरह एक कदम पार कर जाएंगे। नहीं, उनके लिए हम नहीं कहते कि आप बोले, और ये भी हम मानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो एक कदम भी नहीं चले हैं, उन तक आपकी आवाज भी नहीं पहुंचेगी, वो समझेंगे भी नहीं, उनके लिए भी हम नहीं कहते हैं कि आप बोले, पर ऐसे भी लोग हैं जो दोनों के बीच में, जो आप न बोलेंगे तो शायद न समझ सकेंगे, जो आप बोलेंगे तो शायद समझ सकते हैं। शायद ही देवताओं ने कहा, लेकिन उन्होंने एक बात और बुद्ध को कही कि ये जो शायद है समझ ले, शायद न समझे, अगर आप न बोले और एक भी समझ सकता व्यक्ति वो अगर इस कारण चूक गया तो आप सोच लें पीड़ा आपकी है, पीड़ा आपको ही रहेगी। और ऐसा बुद्धों ने कभी नहीं किया है। तो बुद्ध बोले समाधि के क्षण में ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब कहीं कुछ कहना सुनना बताना व्यर्थ हो गया है। किसको बताना है, किसको कहना है, किसको सुनना है। फिर भी कुछ लोग लौटे। मनन के सीढ़ी पर आकर ऐसे लोगों को बड़ी दुरूह घटना घटती है। और इसलिए महानतम कलाकार वे हैं, वे नहीं जो छंद गीत रच लेते हैं, कलाकार हैं। वे भी नहीं जो चित्र मूर्तियां बना लेते हैं, कलाकार हैं। लेकिन महाकलाकार वे हैं जो समाधि के बिल्कुल अगोचर अदृश्य अनुभव को गोचर और दृश्य शब्दों में मनन की सीढ़ी पर बांधते हैं, चेष्टा करते हैं कि किसी तरह कुछ इशारे पैदा किए जा सके, कुछ उपाय रचते हैं, कुछ विचार की श्रृंखला निर्मित करते हैं, कुछ विचार की व्यवस्था बनाते हैं जहां से आपको भी थोड़ी सी झलक, कम से कम मन के तल पर ही थोड़ी सी चोट पुलक का अनुभव हो सके। लेकिन मनन भी बहुत लोग कर लेते हैं। वो आखिरी सीढ़ी जो है, जैसे हमने पहली दफे जाते वक्त श्रवण कहा था, वही सीढ़ी लौटते वक्त प्रवचन बन जाती है। वही सीढ़ी सुनना बोलना, जाते वक्त जो सुनना था राइट लिसनिंग थी, ठीक ठीक सुनना था श्रवण था, लौटते वक्त वही राइट स्पीकिंग ठीक ठीक बोलना बन जाता है। और ध्यान रहे पहली सीढ़ी पर होता है शिष्य और इस लौटती हुई आखिरी सीढ़ी पर होता है गुरु, और इन दोनों के बीच जो मिलन है वो उपनिषद है। जहां सुनने वाला ठीक ठीक मौजूद है और जहां बोलने वाला ठीक ठीक मौजूद है, इन दोनों के बीच जो मिलन की घटना है वो उपनिषद है। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के पास रहकर जिसे जाना, गुरु के पास बैठकर जिसे सुना, पास होकर जो अनुभव में आया, निकटता में जिसकी ध्वनि मिली, सामीप्य में जिसका स्पर्श हुआ। उपनिषद का अर्थ है पास बैठकर, पास होकर, निकटता पाके। तो शिष्य हो कान सुनना और गुरु रह जाए सिर्फ वाणी, सुनने वाला ना हो बोलने वाला ना हो, यहां हो सिर्फ वाणी वहां हो सिर्फ सुनने की क्षमता, तब उपनिषद घटता है। ये सूत्र कहता है समाधि में वृत्तियां केवल आत्मरूप विषय वाली होती, आनंद का अनुभव हो, मौन का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, शून्य का अनुभव हो, मुक्ति का अनुभव हो, लेकिन ये कोई अनुभव समाधि में सीधे पकड़े नहीं जा सकते, इससे जान नहीं पड़ती है, ये वृत्तियां जान नहीं पड़ती है। पर समाधि में से उठे हुए साधक की वे उत्थान पाई हुई वृत्तियां इस स्मरण से अनुमान की जाती है। तो बुद्ध भी ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही है समाधि में, वो भी इतना ही कहते हैं ऐसा मेरा अनुमान है कि समाधि में ऐसा है। इसलिए महावीर तो अपनी वाणी में स्यात लगाकर ही बोलते हैं, वो कहते हैं स्यात वहां आनंद है। इससे कुछ कोई ये ना समझ ले कि महावीर को पता नहीं है, वाणी से ऐसे लगता है कि महावीर भी अगर कहते हैं कि स्यात तो इनको भी संदेह है, कुछ संदेह के कारण नहीं, अत्यंत सत्य निष्ठा के कारण है। महावीर की सत्य निष्ठा इतनी अछूती और इतनी कुंवारी है कि कि वैसी सत्यनिष्ठा खोजनी मुश्किल है। तो महावीर ये कहते हैं कि जिस मन से मैं अब ये जान रहा हूं वो मन वहां मौजूद नहीं था, ये दूर से सुनी हुई खबर है मन के लिए। घटना जहां घटी थी वहां मन मौजूद न था। मन चश्मदीद गवाह नहीं, दूर था, अनुमान किया है इसने, इंसर किया है, सोचा है। घटना घटी थी दूर, जैसे हम यहां बैठे हो और गौरी शंकर के शिखर पर जमी हुई बर्फ को हम देख सकते हैं यहीं बैठे। मन बहुत दूर था और गौरी शंकर के शिखर पर जो शीतलता बरसी थी उसका उसने अनुमान किया है। इसलिए महावीर साथ ही का उपयोग करते हैं, वे कहते हैं साथ वहां परम आनंद है। ये अत्यधिक सत्यनिष्ठा के कारण है, क्योंकि अनुमान ही है ये मन का, मन का। महावीर के लिए अनुमान नहीं है, महावीर ने जाना है, लेकिन जिसने जाना है जानते क्षण में इतनी एकता हो जाती है कि अनुभव नहीं होता। जान के जब महावीर वापस लौटते हैं मन में, ऐसा समझ लें कि आप जाए गौरी शंकर के शिखर पर और शीतलता के साथ एक हो जाए, आप भी शीतलता हो जाए, या बर्फ के साथ एक हो जाए, आप भी बर्फ की तरह जम जाए, तो वहां कोई अनुभव ना हो, क्योंकि अनुभोक्ता अलग ना हो। फिर आप उतरे और नीचे जमीन पर आकर अपनी दूरबीन उठा के फिर गौरी शंकर को देखे, तो वो जो गूंजता हुआ अनुभव रह गया है भीतर, जो जाना था लेकिन निकटता इतनी थी कि जानने लायक दूरी न होने से जान नहीं जा सका था, अब इस दूरी पर पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य मिल गया। अब अपनी दूरबीन मन की उठाकर वापिस देखा है, अब अनुमान होता है कि परम शीतलता थी, कि परम शुभ्र बर्फ का विस्तार था, कि कैसी ऊंचाई थी, कि सारा गुरुत्वाकर्षण खो गया था, कि उड़ जाते आकाश में ऐसे पंख लग गए थे, कि कितना शुद्ध था आकाश, की कैसी नीलिमा थी, कि बादल भी सब नीचे छूट गए थे, निरभ्र शून्य आकाश रह गया था। लेकिन ये सब जमीन पर खड़े होकर पुनर्विचार है। इसलिए सूत्र कहता है स्मरण से अनुमान की जाती है। इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिए जाते हैं, पर इस समाधि द्वारा वे नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध धर्म बढ़ते। इस दूसरे सूत्र में दो शब्द बड़े कीमत के हैं, कर्म और धर्म। जो हम करते हैं वो कर्म है और जो हम हैं वो धर्म है। धर्म का अर्थ है हमारा स्वभाव और कर्म का अर्थ है जो हम करते हैं। कर्म का अर्थ है हमारा स्वभाव अपने से बाहर जाता है, कर्म का अर्थ है हम अपने से बाहर जगत में उतरते हैं, कर्म का अर्थ है हम अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे से जुड़ते हैं, स्वभाव का अर्थ है दूसरे से पृथक जगत में बिना गए जो मैं हूं। मेरा जो भीतरी होना है मेरे करने से उसका कोई संबंध नहीं, मैं क्या करता हूं इससे वो निर्मित नहीं होता, वो मेरे सब करने के पहले मौजूद है, वो जो मेरा स्वभाव है। कर्म में भूल हो सकती है, धर्म में कोई भूल नहीं होती। कर्म में चूक हो सकती है, धर्म में कोई चूक नहीं होती। ध्यान रखना, धर्म का अर्थ यहां मजहब या रिलीजन नहीं, यहां धर्म का अर्थ है गुण स्वभाव, वो जो हमारा आंतरिक स्वभाव है, हमारा होना है, बीइंग है। तो हम जितने कर्म करते हैं उतना ही आच्छादित होता चला जाता है स्वभाव, हम जो जो करते हैं उससे हमारा होना दबता जाता है, और धीरे धीरे कर्म की इतनी परतें हो जाती है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि कर्मों के अतिरिक्त भी हमारा कोई होना। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन है, तो आप जो भी उत्तर देते हैं वो कर्मों के बाबत है, आपके धर्म के बाबत नहीं। आप कहते हैं मैं इंजीनियर, आप कहते हैं मैं डॉक्टर, आप कहते हैं मैं व्यापारी हूँ, आपने ख्याल किया व्यापार कर्म है, आप व्यापारी नहीं है, व्यापार करते। कोई आदमी डॉक्टर कैसे हो सकता है, डॉक्टरी कर सकता है। कोई आदमी इंजीनियर कैसे होगा, आदमी और इंजीनियर हो जाए तो आदमी खत्म ही हो गया। आदमी इंजीनियरिंग करता है, वो उसका कर्म है, उसका होना नहीं। आप जो भी अपना परिचय देते हैं अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे आप सदा अपने कर्म का परिचय देते हैं, कभी अपने होने की खबर नहीं देते, दे भी नहीं सकते, उसकी खबर आपको ही नहीं। आप इतने जानते हैं जो आप करते हैं, करने का आपको पता है कि मैं क्या करता हूं, क्या कर सकता हूं, मैंने पीछे क्या किया है और आगे मैं क्या करने के योग्य हूं, यही आप खबर देते हैं। जो सर्टिफिकेट लेके आप घूमते हैं, आप क्या कर सकते हैं उसकी खबर देते हैं, आप क्या हैं उसकी नहीं। अगर आप कहते हैं मैं साधु हूं, उसका मतलब यह है कि आप साधुता करते हैं। कोई कहता है मैं चोर हूं, उसका मतलब वो चोरी करता है। एक का कर्म साधुता है, एक का कर्म चोरी है। लेकिन होना क्या है, आपके भीतर क्या है? जब आप पैदा नहीं हुए थे मां के पेट से, तब साधु क्या था, चोर क्या था, इंजीनियर क्या था, डॉक्टर क्या था? मां के पेट में अगर इनसे कोई पूछता कौन हो तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि इंजीनियर थे नहीं तब, डॉक्टर थे नहीं तब, व्यापार कुछ किया नहीं था। मां के पेट में अगर कोई पूछता कौन हो भीतर, तो कोई उत्तर नहीं आ सकता था कि आ सकता था, कोई उत्तर नहीं आ सकता। मगर थे आप मां के पेट में, उत्तर नहीं आ सकता था। आज तो ब्रेन वॉश, मस्तिष्क को धो डालने के बहुत उपाय खोज मिल गए। आप कहते हैं मैं इंजीनियर हूं, आपका मस्तिष्क धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। ठीक से हो जाए फिर आपसे पूछो कौन हो, आप खाली रह जाए, क्योंकि वो जो इंजीनियर होना था वो स्मृति में था, पढ़े थे लिखे थे, सर्टिफिकेट पाया था, कुछ किया था, यश पाया था, आप यश पाया था, वो स्मृति में था, वो धो दी गई। अब आप कोई उत्तर नहीं दे सकते कि कौन है, लेकिन है। होना नष्ट नहीं किया जा सकता है स्मृति के दौरे से, लेकिन कर्म की रेखाएं साफ की जा सकती है। यह सूत्र कहता है अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिए जाते हैं स्वभावतः, प्रतिदिन प्रतिपल कर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं। उठते हैं, बैठते हैं, श्वास लेते हैं, कर्म हो रहा है। सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, कर्म हो रहा है। कोई आदमी कर्म छोड़ के भाग नहीं सकता, क्योंकि भागना भी कर्म है। कहां जाइएगा, जंगल में बैठ जाएंगे जाके, बैठना भी कर्म, आंख बंद कर लेंगे, आंख बंद करना भी कर्म, कुछ भी करिए, जहां करना है वहां कर्म है। तो प्रतिपल में मालूम कितने कर्म किए जा रहे हैं, वो उनकी छाया, उनकी स्मृति, उनकी रेखा, उनका संस्कार भीतर छूटता जा रहा है। जो भी आप कर रहे हैं वो आपके होने पर इकट्ठा होता जा रहा है, जैसे कि रिकॉर्ड पर ग्रूव बन जाते हैं। फिर ग्रामोफोन की सुई लगा के चलाएं तो जो जो भर गया है रिकॉर्ड की रेखाओं में वो पुनर्जीवित होकर प्रकट होने लगता है। ठीक आपका मन आपके सब कर्मों की संग्रहित संहिता है, सब इकट्ठा है, जो जो आपने किया है उस सब के आपके ऊपर रेखाएं खींच गई, और ये रेखाएं अनंत जन्मों की है। ये भार बड़ा है और आप करीब करीब उसी उसी को फिर फिर दोहराते रहते हैं। करीब करीब आपकी हालत घिसे रिकॉर्ड जैसी है कि सुई फंस गई, चलाया जा रहा है, वही लकीर दौड़ रही बार बार। क्या कर रहे हैं आप? कल भी वही किया, आज भी वही किया, परसों भी वही किया था, कल भी वही करिएगा। वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही काम, उन सब का सब घिसने रिकॉर्ड, फंस गई सुई, निकल नहीं पाती गड्ढे से, वही आवाज बार बार दिए जाती। इसलिए तो जिंदगी में इतनी ऊब, इतनी बोर्डम होगी ही, क्योंकि नया कुछ होता नहीं, सुई आगे बढ़ती ही नहीं। लौट के देखें आपकी 30-40 साल की जिंदगी, क्या किया है आपने? एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हैं। वही रोज दौड़ता जाता है, तुम लुप्त होता चला जाता है। इसी को भारत के मनुष्यों ने आवागमन कहा है। वही फिर वही, इस जन्म में वही, अगले जन्म में वही, उसके अगले जन्म में वही, अतीत की कथा वही, भविष्य की कथा वही, वही काम वासना है, वही प्रेम, वही क्रोध, वही घृणा, वही मित्रता, वही शत्रुता, वही धन का कमाना, वही मकान बनाना, और फिर सब करके एक दिन पाना कि हवा का झोंका आया और वो जो ताश का महल बनाया था गिर गए। मगर जैसे बच्चे तत्काल फिर से पत्तों को इकट्ठा करके मकान बनाने लगते, वैसे हम फिर तत्काल नया जन्म लेकर फिर पत्तों का मकान बनाने में लग जाते। अब की दशा और मजबूत बनाने की कोशिश करते, मगर मकान वही है, ढांचा वही है, मन वही है, फिर हम वही कर लेते हैं और फिर उसी तरह अस्त होते रहते। ये सूरज ही नहीं है जो रोज शाम डूब के सुबह फिर उगाता है, आप भी ऐसे ही डूबते उगते रहते। एक वर्तुलाकार है, एक व्हील। संसार शब्द का अर्थ होता है चाक, व्हील जो घूमता रहता है एक ही दूरी पर। ये जो अनंत अनंत कर्म इकट्ठे कर लिए जाते हैं इस समाधि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा समझने जैसा है, क्योंकि अनेक लोग सोचते हैं कि अगर कर्म बुरे इकट्ठे हो गए हैं तो अच्छे कर्म करके उनको नष्ट कर दें। वो गलती नहीं, बुरे कर्मों को अच्छे कर्म करके नष्ट नहीं किया जा सकता। बुरे कर्म बने रहेंगे और अच्छे कर्म और इकट्ठे हो जाएंगे, बस इतना ही होगा। वो काटते नहीं है एक दूसरे को, काटने का कोई उपाय नहीं। एक आदमी ने चोरी की, फिर वो पछताया और साधु हो गया, तो साधु होने से वो चोरी का कर्म और उसके जो संस्कार उसके भीतर पड़े थे वो कटते नहीं, कटने का कोई उपाय नहीं। साधु होने का अलग कर्म बनता है, अलग रेखा बनती है। चोर की रेखा पर से साधु की रेखा गुजरती ही नहीं, चोर से साधु का क्या लेना देना? आप चोर थे, आपने एक तरह की रेखाएं खींची थी, आप साधु हुए, ये रेखाएं उसी स्थान पर नहीं खींचती जहां चोर की रेखाएं खींची थी, क्योंकि साधु होना मन के दूसरे कोने से होता है, चोर होना मन के दूसरे कोने से होता है। तो होता क्या है, आपके चोर होने की रेखा पर साधु होने की रेखाएं और आच्छादित हो जाती, कुछ कटता नहीं, तो चोर के ऊपर साधु सवार हो जाता है बस। उसका मतलब चोर साधु ऐसा आदमी पैदा होता है। साधुता चोरी को नहीं काट सकती, चोर तो बने ही रहता है भीतर, इम्पोजिशन हो जाता, एक और सवारी उसके ऊपर हो गई। तो चोर भी ठीक था एक लिहाज और साधु भी ठीक था एक लिहाज। ये जो चोर और साधु की खिचड़ी निर्मित होती है ये भारी उपद्रव है, ये सतत आंतरिक कलह है, क्योंकि वो चोर अपनी कोशिश जारी रखता है और ये साधु अपनी कोशिश जारी रखता है, और हम इस तरह न मालूम कितने कितने रूप अपने भीतर इकट्ठे कर लेते हैं जो एक दूसरे को काटते नहीं, जो पृथक ही निर्मित होते हैं। इसलिए ये सूत्र कहता है कि समाधि के द्वारा वे सब कट जाते हैं। कर्म से कर्म नहीं कटता, अकर्म से कर्म कटता है। इसको ठीक से समझ लें, कर्म से कर्म नहीं कटता, कर्म से कर्म और भी सघन हो जाता है, अकर्म से कर्म कटता है। और अकर्म समाधि में उपलब्ध होता है, जबकि कर्ता रह नहीं जाता। जब हम उस चेतना की स्थिति में पहुंचते हैं जहां सिर्फ होना ही है, जहां करना बिल्कुल नहीं है, जहां करने की कोई लहर भी नहीं उठी कभी, जहां मात्र होना अस्तित्व ही रहा है सदा, जहां बीइंग है डूइंग नहीं, उस होने की क्षण में अचानक हमें पता चलता है कि कर्म जो हमने किए थे वो हमने किए ही नहीं थे। कुछ कर्म थे जो शरीर ने किए थे, शरीर जाने, कुछ कर्म थे जो मन ने किए थे, मन जाने, और हमने कोई कर्म किए ही नहीं थे। इस बोध के साथ ही समस्त कर्मों का जाल कट जाता है। आत्मभाव समस्त कर्मों का कट जाना है। आत्मभाव के खो जाने से ही वहम होता है कि मैंने किया। चोरी कर रहा है या तो शरीर करवाता है या मन करवाता है। कुछ लोगों के शरीर इस हालत में हो जाते हैं कि चोरी करनी पड़ती है, भूखा आदमी है, शरीर चोरी करवा देता है। आत्मा कभी कोई चोरी नहीं करती। भूख है, पीड़ा है, परेशानी है, बच्चा मर रहा है और दवा नहीं, और एक आदमी चोरी कर देता है, ये शरीर के कारण हुई चोरी। अभी तक हम फर्क नहीं कर पाए शरीर के चोर और मन के चोरों में, क्योंकि शरीर का चोर अपराधी नहीं है। शरीर के चोर का मतलब है कि समाज अपराधी है, मन का चोर अपराधी। मन का चोर अलग चीज है, कोई जरूरत नहीं, घर में तिजोरी भरी लेकिन एक पैसा सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए तो उठा के जेब में रख लेता है। ये जो आदमी है ये मन का चोर है, मतलब इनकी इनकी कोई शारीरिक शरीर इनसे नहीं कह रहा है चोरी करो। इनका लोभ, इस एक पैसे से इनका कुछ बढ़ेगा भाई नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो बढ़ेगा ही, एक पैसा भी बढ़ेगा। करोड़ों रुपए हो और एक पैसे को भी उठाने की नियत बनी रहे, ये है असली अपराधी। लेकिन ये पकड़ में नहीं आता, पकड़ में वो शरीर का अपराधी आ जाता। यह है असली अपराधी, क्योंकि कोई कारण नहीं है शरीर के तल पर भी कि ये चोरी करे, लेकिन ये चोरी कर रहा है। चोरी करना इसकी आदत है, चोरी में इसका रस है। मनोविज्ञान एक बीमारी की बात करता है, क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी होती मन की, अधिक लोग उसके बीमार हैं। कुछ लोगों को मनोविज्ञान पकड़ता है जो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते। मैं एक प्रोफेसर को जानता रहा हूं, पैसे वाले थे, सुविधा संपन्न थे, सब कुछ था, एक ही लड़का था, वो लड़का क्लेप्टोमेनियाक था, उसको चोरी का चोरी की बीमारी थी, तो कुछ भी चुरा लेता था। इससे कोई संबंध नहीं था वो क्या है, आपके घर में गया एक बटन टूटी पड़ी फॉर्म वो खींचे कर ले, उसका कोई उपयोग नहीं, एक सुई मिल जाए पड़ी वो मार। किताब देख रहा हूं आपकी, एक पन्नी फाड़ के खीसे में रख लेगा। उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना है इसका, और कोई ऐसी भी चोरी करके नहीं लाता है कि लगे कि भाई कोई चोरी कर रहा है, कुछ भी ले आता है। और लड़का एमए में पढ़ता था, होशियार लड़का था, तो मैं उस लड़के से थोड़ा संबंध बनाया, तो उसने मुझे ले जाके अपनी अलमारी दिखाई। उस अलमारी में उसने जो जो चीजें कभी चुराई सब रखी हुई थी, उन पर साथ साथ चिट्ठियां लगी हुई थी कि किसको धोखा दिया, किसके घर से मार के लाए, इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका किसी को। वो इसका रक्त ले रहा था। बटन उठा लाया आपके घर की, उस पर लिखा हुआ था कागज पर कि फला आदमी के घर से बटन लाया, और वो आदमी सामने बैठा था लेकिन अंदाज भी नहीं हुआ कि ले गया। अब ये रस और तरह का, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, या तो शरीर की चोरी है या मन की चोरी, आत्मा की कोई चोरी नहीं। तो जिस दिन आप आत्मा में प्रवेश करते हैं उसी दिन अचानक आप पाते हैं कि वो चोरी तो मैंने कभी की ही नहीं थी, वो कर्म मैंने किए नहीं, मैं उन कर्मों में केवल मौजूद था। ये सच है कि मेरे बिना वे कर्म नहीं हो सकते थे, ये भी सच है कि मैंने वे कर्म नहीं किए थे। तो मन विज्ञान एक शब्द का प्रयोग करता है, वो कीमती है। विज्ञान में एक शब्द प्रयोग किया जाता है कैटलिटिक एजेंट। अगर आप पानी को तोड़े तो उसमें से ऊर्जा और ऑक्सीजन मिलती है, और कुछ नहीं मिलता। H2O उसका फॉर्मूला है, दो परमाणु ऊर्जा के एक ऑक्सीजन का, उनसे मिलके पानी बनता है। तो आप दो अनुपात में ऊर्जा और एक अनुपात में ऑक्सीजन मिला के पानी बनाना चाहें तो भी बनेगा नहीं। ये बड़े मजे की बात है, अगर पानी को तोड़े तो दो अनुपात ऊर्जा एक अनुपात ऑक्सीजन मिलती है। स्वभावतः अगर आप दो अनुपात ऊर्जा और एक अनुपात ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी बनना चाहिए, लेकिन पानी बनता नहीं। तो एक और चीज है जिसकी मौजूदगी की जरूरत पड़ती है, वो भीतर प्रवेश नहीं करती लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी में घटना घटती है, वो है बिजली। इसलिए आकाश में जब बिजली चमकती है वो कैटलिटिक एजेंट, उसकी वजह से पानी बनता है। जब बिजली चमकती है उसकी मौजूदगी जरूरी है, वो कुछ करती नहीं, वो पानी में प्रवेश नहीं होती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप रख दें और बीच में बिजली को उठा दें, पानी बन जाएगा। फिर पानी को तोड़े तो बिजली नहीं निकलेगी, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगी। उसका मतलब यह हुआ कि बिजली भीतर प्रवेश नहीं करती पानी के निर्माण में, लेकिन पानी निर्मित नहीं हो सकता बिजली के बिना मौजूदगी के। इस खास घटना को विज्ञान कहता है कैटलिटिक एजेंट, ऐसी उपस्थिति जिसके बिना घटना नहीं घटेगी, फिर भी वो वस्तु घटना में भीतर प्रवेश नहीं करती। तो आप चोरी नहीं कर सकते बिना आत्मा के, आत्मा कैटलिटिक एजेंट, उसकी मौजूदगी जरूरी। शरीर अकेला लाश के कोई चोरी करने नहीं जाती, लाश के खीसे में भी पैसा रख दे तो भी हम उसको चोरी नहीं कहेंगे। लाश का चोरी से क्या संबंध होगी, लाश कर्म ही नहीं कर सकती। अकेला मन भी चोरी करने नहीं जाता, अकेला मन कितनी सोचे चोरी नहीं कर सकता, और अगर भीतर आत्मा ना हो तो सोच भी नहीं सकता। आत्मा की मौजूदगी जरूरी है तब चोरी घटती है, लेकिन फिर भी जिस दिन आदमी आत्मा में पहुंचता है उस दिन पाता है कि मौजूदगी में घटी थी लेकिन आत्मा चोरी में प्रवेश नहीं की, आत्मा सिर्फ मौजूद थी। उसकी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली है कि घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। एक चुंबक पड़ा है, लोहे के टुकड़े खींच रहे हैं, आपसे आज सोचते होंगे चुंबक खींच रहा है तो आप गलती में, चुंबक का होना ही काफी है, चुंबक को खींचना नहीं पड़ता, खींचने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई अस्थि मांसपेशियां सिकोड़नी नहीं पड़ती कि खींचो, चुंबक को कुछ पता ही नहीं चलता कि चुंबक का होना ही लोहे के टुकड़े खींचना शुरू हो जाते। आत्मा की मौजूदगी और कर्म शुरू हो जाते, शरीर सक्रिय हो जाता है, मन सक्रिय हो जाता है, कर्म की यात्रा शुरू हो जाती। जिस दिन आप इस आत्मा में पुनः प्रवेश करते हैं समाधि में, उस दिन सारे कर्म से छुटकारा हो जाता। इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको बांधा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी बांधा ही नहीं था, और आप अपने तक कभी पहुंचे नहीं थे कि समझ पाते कि मैं अनबंधा हूं। ये जो उपनिषद की दृष्टि है, एक अर्थ में बड़ी नीति विरुद्ध, और इसलिए उपनिषदों का बड़ा विरोध भीतर गहरे मन में रहा है। जो भी नीतिवादी है वो कहेगा कि बुरे कर्म को अच्छे कर्म से काटो, अच्छे कर्म करो बुरे कर्म मत करो। उपनिषद कहते हैं कर्म करते हो यही बुरा है, अच्छा करते हो कि बुरा करते हो तो गौण बात, कर्म करने का तुम्हें ख्याल हो तुम करता हो बस यही बुराई। तो बुराई दो तरह की है, बुरी बुराई अच्छी बुराई, बाकी दोनों बुराई है। क्योंकि तुम कर्म करते हो यही भ्रांति, तुम सिर्फ मौजूद हो और कर्म हो रहा है, तुम्हारी मौजूदगी में कर्म हो रहा है, तुम सिर्फ साक्षी हो कर्ता नहीं हो। जिस दिन इस मौजूदगी को तुम इसकी मौजूदगी में ही समझ लोगे, कर्ता की तरह नहीं साक्षी की तरह, उसी दिन तुम पाओगे कि जो भी हुआ वो मेरे आसपास हुआ, जो भी हुआ मैंने नहीं किया मेरे आसपास हुआ, वो घटना घटी थी मेरे पास पास घटी थी, लेकिन मैं फिर भी अछूता और दूर रह गया। रात जैसे आप स्वप्न देखते हैं और सुबह जागते कहते हैं स्वप्न घटा और आप अछूते रह जाते हैं। स्वप्न में हो सकता है चोरी की हो, और स्वप्न में ये भी हो सकता है कि जेल खाने में चले गए, स्वप्न में ये भी हो सकता है रिश्वत दे के बच गए हो जेल खाने न गए हो, स्वप्न में कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुबह जब आप जागते हैं तो स्वप्न ऐसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे हुआ ही ना हो। सुबह उठ के आप अपने को चोर अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ख्याल किया आपके बिना स्वप्न हो सकता था? आप थे तो ही स्वप्न हो सका, आप न होते तो मुर्दे को लाश को स्वप्न नहीं आता, आप थे तो स्वप्न घटा, आपकी मौजूदगी जरूरी थी, फिर भी सुबह उठ के आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि अब क्या करें, रात चोरी कर ली, व्रत करें उपवास करें कोई दान त्याग करें क्या करें, कुछ भी अनुभव नहीं करते। जागने के बाद दो मिनट से ज्यादा स्वप्न याद भी नहीं रहता, खो जाता है धुएं की रेखा की तरह। ठीक समाधि की स्थिति में पूरा जीवन स्वप्नवत मालूम होता है, जो जो जिया एक जीवन में अनंत जीवन में जो जो जिया, समाधि की अवस्था में पहुंचते ही जैसे आप सुबह नींद से जागने में पहुंचते हैं, ऐसे ही तथाकथित जागने से जब आप समाधि में पहुंचते हैं तब पीछे का सारा सारा वर्तुल सब धुआं स्वप्न हो जाता है। समाधि में पहुंचा हुआ पहली दफा जानता है मैं सिर्फ हूं, कर्म मेरे पास घटे स्वप्न जैसे, और उनकी जरा भी चिंता और पश्चाताप नहीं रह जाता, न उनकी कोई आत्म प्रशंसा और आत्म स्तुति रह जाती कि मैंने कैसे बड़े बड़े कर्म किए, कि मैंने कैसे छोटे छोटे कर्म किए, नहीं वो सब खो जाते। रात सपने में आप सम्राट थे कि रात सपने में आप एक परम सन्यासी थे कि रात सपने में चोर हत्यारे थे, सुबह चाय पीते वक्त स्वाद में तीनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों व्यर्थ हो जाते। सुबह ऐसा नहीं कि सम्राट रहे रात तो बड़ी अकड़ से चाय पी रहे, सपने के सपने कि रात चोर रहे बेईमान रहे हत्या की तो चाय में बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा, बड़ा अपराधी मन तिक्त तिक्त मालूम हो रही कि रात साधु रहे तो कैसे चाय पिए, ऐसा भी सुबह नहीं होता। रात भर साधु रहे और सुबह से चाय पी रहे हैं कैसा जघन्य कृत्य, नहीं सुबह आप जब चाय पीते हैं तब सपने सब खो गए। सुना है मैंने बड़ा फकीर था जापान में रिंझाए, एक सुबह उठा और अपने एक शिष्य से जैसे वो उठा उसका शिष्य पास खड़ा था उससे उसने कहा कि रात मैंने एक सपना देखा है तुम व्याख्या करोगे तो मैं सपना बोलू। उसके शिष्य ने कहा दो मिनट रुके जरा मैं हाथ मुंह धोने के लिए आपके लिए पानी ले आऊं। वो हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले आया, रिंझाई ने हाथ मुंह धो लिया मुस्कुराया, तब तक एक दूसरा शिष्य आ गया। रिंझाई ने कहा कि मैंने रात एक सपना देखा, मैं इस नंबर एक के शिष्य को कहने जा रहा था कि बताऊं तुझे सपना तू व्याख्या करेगा, लेकिन मेरे बताए इसने व्याख्या कर दी, तुझे बताऊं? उसने कहा रुके जरा एक गर्म चाय की प्याली ले आऊं फिर हो जाए। चाय की प्याली पीते रिंझाई हंसा और कहा कि मैं खुश हूं, अब कोई सपना बताने की जरूरत नहीं। तीसरा एक व्यक्ति मौजूद सब ये देख रहा था, ना समझी की हद हो गई, उसने कहा भी सीमा की भी कोई बातें होती तो सपना बताया नहीं गया है, व्याख्याएं भी हो चुकी और सब हल भी हो गया। उसने कहा कि महाराज कम से कम सपने का तो पता चल जाए, सपना क्या था। रिंझाई ने कहा कि इनकी परीक्षा कर रहा था, अगर ये आज सपने की व्याख्या करने की तैयारी दिखाते तो इन्हें मैं बाहर कर देता आश्रम के। सपने की कोई व्याख्या करनी होगी, सपना था बात खत्म हो गई, इसने ठीक किया। इसने कहा कि अभी भी कुछ सपने की मधोसी बाकी है, जरा हाथ में धो लो। इस दूसरे ने भी ठीक ही किया कि मालूम होता हाथ में धोने से भी काम नहीं हुआ, सपना अभी भी कुछ धूम धूम तरफ रहा, जरा गर्म गर्म चाय पी लो फिर जरा जाग जाओ, यही सपने की व्याख्या है। सपने की कोई और व्याख्या हो सकती, जाग जाओ सपना व्यर्थ हो जाता है, व्याख्या क्या करनी, व्यर्थ की तो कोई व्याख्या नहीं करता है। समाज में जिनको हमने बड़े बड़े कर्म, छोटे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कितने कितने बांटे थे, विभाजन किए थे, नीति और अनीति, सदाचार और अनाचार, सब के सब बेमानी हो जाते, व्यर्थ हो जाते। जाग कर समाधि में पता चलता है कि बड़ा स्वप्न था, लंबा अनंतकालीन अनादि, लेकिन स्वप्न था और मैं सिर्फ मौजूद था, मैं प्रविष्ट नहीं हुआ था, बाहर ही खड़ा था। इसलिए सब कट जाता है कर्म और धर्म का उदय होता है। जब कर्म कट जाता है, जो हम करते थे वो कट जाता है, तब हमें पता चलता है जो हम हैं, जो हमारा होना है, स्वभाव है। स्वभाव है धर्म। उत्तम योग्यता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि वह मेघ की तरह धर्म रूप हजार धाराओं की वर्षा करती है। धर्म मेघ बड़ा प्यारा शब्द है। मेघ तो हमने देखे है, आषाढ़ आता है और मेघ गिर जाते हैं आकाश में, लेकिन पूरी घटना का हमें ख्याल नहीं है। वो जो आकाश में मेघ गिर जाते हैं आषाढ़ में और मोर नाचने लगते हैं और जमीन जगह जगह दरारें बन जाती है, ओंठ खोल देती है अपने अपने हृदय तक पानी की बूंदों को पी जाने के लिए, अपने द्वार तोड़ देती है सब तरफ से। और प्यासी धरती बहुत दिन से प्रतीक्षा में थी, प्यासे वृक्ष तड़फ रहे थे मछलियों की तरह, जैसे रेत में किसी ने उनको फेंक दिया हो। फिर गिरते हैं बादल और फिर काले मेघों की छाया में वर्षा शुरू हो जाती और एक नृत्य सारी प्रकृति पर और एक गीत सारी प्रकृति पर छा जाता है। धर्म मेघ ऐसी ही आषाढ़ की भीतर घटी घटना है, ऐसी कि जन्मों जन्मों से प्राण प्यासे थे, दरारें पड़ गई थी, कोई प्यास बुझाने वाला पानी न मिला था, पीते थे पानी, उससे प्यास केवल बढ़ती थी, बुझती नहीं थी। बहुत पानी पिए और बहुत घाटों की यात्रा की और न मालूम क्या क्या खोजा और पकड़ा, लेकिन सब बार आशा निराशा हुई, हाथ कुछ लगा नहीं। वो धरती पूरे प्राणों की फटी प्यासी अभिप्सा से भरी, समाधि के क्षण में पहली दफा उसके ऊपर मेघ गिरते हैं, समाधि के क्षण में पहली दफा आषाढ़ आता है भीतर। और अमृत की एक वर्षा, एक सिर्फ प्रतीक है, अमृत की एक वर्षा भीतर होने लगती, आत्मा नहा जाती और अनंत अनंत धाराओं में उन मेघों से अमृत गिरने लगता है। ये सिर्फ प्रतीक है, घटना इससे बहुत बड़ी है। न तो अमृत कहने से कुछ पता चलता है उसके बाबत, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सूचना मिलती है कि मेघ गिर गए ऊपर और उनसे वर्षा होने लगी और जो प्यासी थी आत्मा जन्मों जन्मों से वो तृप्त हो गई। उत्तम योग्यता इस समाधि को धर्म मेघ कहते हैं, क्योंकि वह मेघ की तरह धर्म रूप हजार धाराओं की वर्षा करती है। लेकिन धर्म मेघ क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वभाव की वर्षा पहली दफा स्वयं पर होती। धर्म यानी स्वभाव। अब तक जो भी जाना प्रभाव था, कभी सौंदर्य दिखा तो किसी और में, कभी प्रेम पाया तो किसी और से, सुख मिला दुख मिला सदा किसी और से, सब जानकारी किसी और की थी, अपना कोई अनुभव ना था। पहली दफा अपनी ही वर्षा अपने ऊपर, अब तक सारी वर्षा दूसरे की थी, कोई और, हमेशा दी अदर्स, वो दूसरा ही महत्वपूर्ण था। पहली दफा दूसरा हट गया और स्वयं की ही वर्षा स्वयं पर होने लगी, जैसे अपना ही झरना टूटा, जैसे अपनी ही धारा फूटी, जैसे अपने ही स्रोत को पा लिया और अपने पर ही अपनी वर्षा होने लगी। धर्म में का अर्थ है स्वभाव बरसने लगा, खुद उसमें नहा गए, डूब गए, ताजे हो गए, नए हो गए। सारे कर्मों की धूल, अनंत अनंत यात्राओं का उपद्रव, सारा कचरा जो ऊपर इकट्ठा हो गया था सब बह गया, रह गई सहजता, स्पॉन्टेनिटी, रह गए स्वयं और कुछ भी ना बचा। एक लिहाज से इसे हम कह सकते हैं परम धन्यता, एक लिहाज से हम कह सकते हैं यही है परम संपदा, और एक लिहाज से कह सकते हैं यही है परम दरिद्रता। अगर संसार को सोचे तो यह आदमी संसार से बिल्कुल दरिद्र हो गया, अगर परमात्मा को सोचे तो यह आदमी परम धन को पा गया। जीसस ने इसी धर्म में समाधि के लिए कहा है पावर्टी ऑफ स्पिरिट। जब कोई जगह पहुंचता है तो सब भांति दरिद्र हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं है अब सिवाय अपने के, सिवाय स्वयं के और कुछ भी ना बचा, इसको कहेंगे दरिद्रता। इसी वजह बुद्ध ने अपने सन्यासियों को स्वामी नहीं कहा, भिक्षु कहा, ये धर्म में एक समाधि की वजह से। बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा अपने स्वामियों को, अपने सन्यासियों को स्वामी, मैं कहूंगा भिक्षु, पर दोनों बातें एक ही अर्थ रखती हैं। अगर संसार की तरफ से देखें तो हो गए भिखारी भिक्षु, और अगर परमात्मा की तरफ से देखें तो हो गए स्वामी सम्राट। हिंदू उपयोग कर रहे थे स्वामी का उस दूसरी तरफ से कि समाधि पाकर व्यक्ति हो जाता है सम्राट मालिक। पहली दफा अब तक भिखारी था, अब तक मानता सज्जा था, हाथ जोड़े था, भिक्षा पात्र फैलाया था, अब तक उसकी आत्मा सिवा भिक्षा पात्र के और कुछ भी न थी। उसमें जो भी टुकड़े कोई फेंक देता था वही उसकी संपदा थी, झूठे उधार बातें दूसरों की टेबल से गिरे हुए टुकड़े वो सब इकट्ठे कर लेता था, उसी को मानता था कि मेरी संपदा है। अब तक भिखारी था, इसलिए हिंदुओं ने इस धर्म में समाधि को उपलब्ध करने वाले सन्यासी को कहा स्वामी। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जो भी था अब तक, सारा संसार, साम्राज्य, धन सब छूट गया, कुछ भी नहीं बचा, पर आया खुद ही बचे, दिन तो आखिरी आ गई। जब आप अकेले हो, कुछ भी ना हो, कपड़ा लगता भी नहीं, मकान भी अपना नहीं, जमीन भी अपनी नहीं, कुछ भी अपना नहीं, सिर्फ खुद ही बचे, इससे ज्यादा दरिद्र भिखारी के पास भी खुद से कुछ ज्यादा होता है, थोड़ा होता होगा लेकिन होता है, खुद से कुछ ज्यादा, एक लंगोटी से ही, लेकिन वो भी संपदा होती। एक भिखारी भी इतना भिखारी नहीं है कि अकेला ही हो, कुछ भी ना हो। बुद्ध ने अपने भिक्षु को कहा कि संसार इस तरह छूट जाए तुमसे कि कुछ भी ना बचे, संसार की रेखा भी ना बचे, तुम बिल्कुल भिखारी हो जाओ संसार की दृष्टि में। और ये दोनों बातें एक है, संसार की तरफ से जो हो जाए भिखारी, आत्मा की तरफ से हो जाता है स्वामी, आत्मा की तरफ से जो हो जाए स्वामी, संसार की तरफ से हो जाता है भिखारी। इसीलिए भिक्षु को हमने इतना आदर दिया जितना हमने किसी स्वामी को कभी नहीं दिया, हमने भिक्षु को उस सिंहासन पर बिठा दिया जहां हमने किसी सम्राट को कभी नहीं बिठाया। भिक्षु आदृत हो गया शब्द, कभी कभी भाषा में भी, भिक्षु शब्द का मतलब तो भिखारी होता है, और किसी को भिखारी कहे तो झगड़ा हो जाए, लेकिन बुद्ध ने अपने परम धन्य शिष्यों को भिक्षु कहा, और जिसको भिक्षु कह दिया वो धन्य भागी हो गया। कभी कभी भाषा में ऐसे लोग बड़ी अड़चने डाल जाते हैं, बुद्ध जैसे लोग भाषा को अस्त व्यस्त कर जाते हैं, भिखारी का मतलब साफ था, खराब कर दिया, नया ही अर्थ दे दिया। भिक्षु हो गया सम्राट, सम्राट भिक्षु के पैरों में गिरे, तो ये भिक्षु परम गरिमा हो गई। धर्म मेघ समाधि एक तरफ से बना देगी भिखारी, एक तरफ से बना देगी सम्राट। इस समाधि द्वारा वासनाओं का समूह पूर्णतया लय को प्राप्त होता है और पुण्य पाप नाम के कर्मों का समूह जड़ से उखड़ जाता है। ध्यान रखना, पुण्य पाप दोनों। यही उपनिषद के चिंतना की गहराई है। पुण्य पाप दोनों का समूह, वो अच्छा किया था वो भी, जो बुरा किया था वो भी, दोनों का समूह जड़ से कट जाता। ये मत सोचना कि परमात्मा के पास जब पहुंचेंगे तो अपने पुण्य का बैंक बैलेंस साथ लिए रहेंगे, कि धर्मशाला बनवाई थी एक, क्या हिसाब रखा उसका कि एक मंदिर बनवा दिया था, कि इतने ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया था, उसका हिसाब अगर लेके पहुंच गए तो दरवाजे पे भला स्वर्ग लिखा हो, भीतर नरक ही पाएंगे, कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं। पाप और पुण्य इस जगत की भाषा में ऊंच नीच, पाप बुरा है पुण्य अच्छा है, समाज की दृष्टि से ठीक है, लेकिन उस परम दृष्टि में पाप पुण्य दोनों ही व्यर्थ है, क्योंकि वहां कर्ता होना पाप है, अकर्ता होना पुण्य। वहां तो सीधी बात है एक, कि वहां जो अकर्ता है, निर अहंकारी है, वही प्रवेश कर पाएगा। वहां तो वही प्रवेश कर पाएगा जो है ही नहीं, जो मिल गया और शून्य होके जा रहा है। अगर थोड़े से भी आप है तो रास्ता बहुत सकरा है, आप प्रवेश न कर पाएंगे। जी सबका वचन, उसका आध्यात्मिक अर्थ कभी भी नहीं किया गया। असल में पश्चिम के पास आध्यात्मिक अर्थों की खोज करने की क्षमता नहीं है, इसलिए जो भी अर्थ होता है वो सांसारिक हो जाता है। जीसस का वचन है कि सुई के छेद से ऊंट निकल जाए लेकिन धनी आदमी मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा। लेकिन पूरी ईसाइयत के 2000 साल और एक बार भी किसी ने इस वाक्य की ठीक व्याख्या नहीं की। 2000 साल लंबा वक्त है। सारी व्याख्या ये हुई कि धनी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता, ऊंट के निकल जाने की संभावना है सुई के छेद से, जो कि नहीं हो सकता। सुई के छेद से ऊंट कैसे निकलेगा? जो नहीं निकल सकता वो भी जीसस कहते हैं हो सकता है निकल जाए, कोई तरकीब खोज ले, कोई रास्ता बन जाए कि सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, लेकिन धनी आदमी स्वर्ग के द्वार में प्रवेश नहीं पा सकेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ जो हो सकता था वो ईसाइयत ने लिया, वो इसका अर्थ नहीं। धनी आदमी से अर्थ है उस आदमी का जो थोड़ा भी लगता है कि मेरे पास कुछ है, जिसको लगता है कि मेरे पास कुछ है वो धनी आदमी, जिसको ख्याल है कि मेरे पास कुछ है वो धनी आदमी है। तो अगर किसी को लगता है कि मैंने पुण्य कमाया है, ये धनी आदमी। किसी को लगता है मैं साधु था, संयमी था, तपस्वी था, ये धनी आदमी। धनी आदमी का मतलब हुआ कि जो कहता है मेरे अलावा भी मेरे पास कुछ है वो धनी आदमी। अगर ये कहता है मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, इतने उपवास किए, इतने दिन धूप में खड़ा रहा, पैर पे ही खड़ा रहता था, बैठता भी नहीं था वर्षों तक, मैंने दरिद्रों की इतनी सेवा की, इतने अस्पतालों में गया, ये किया वो किया, अगर इसके पास कुछ भी कहने को है कि मेरे पास इतना है तो यह आदमी धनी आदमी। अब सूत्र को फिर सुन ले, ऊंट गुजर जाए सुई के छेद लेकिन धनी आदमी मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धन कौन है? ईश्वर के सामने खड़ा होकर जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं कि मेरे पास कुछ है, कि मेरे पास ध्यान है, कि मेरे पास पुण्य है, कि मेरे पास धर्म है, ईश्वर के सामने खड़ा हो जाता है शून्यवत और कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं, अकेला मैं हूं, जो कुछ भी हूं, जो तुमने ही मुझे दिया है वही मैं हूं, उसके अतिरिक्त मेरी कोई भी कमाई नहीं, मेरा होना ही मेरा सब कुछ है, मेरे पास कर्म का कोई भी लेखा जोखा नहीं। ऐसा शून्यवत जो द्वार पर खड़ा होता है वो है दरिद्र आदमी, वो है बुद्ध का भिक्षु, जीसस का दरिद्र आदमी, वही प्रवेश कर पाता है। तो दरिद्रता का ठीक अर्थ हुआ कि जो बिल्कुल शून्य है, जो शून्य है वही प्रवेश कर पाता है। और इसलिए ऊंट की बात कही, सुई का छेद बहुत छोटा है, इस ऊंट के निकलने का कोई उपाय नहीं। मोक्ष का द्वार सुई के छेद से भी बहुत छोटा है, उसमें से सिर्फ शून्य ही निकल सकता है। अगर जरा सा भी पदार्थ आपके पास है, जरा सा भी मैं, अटक जाएगा। ऊंट लेके जा रहे हैं आप सुई के छेद में से निकलने, ऊंट छोड़ दें, लेकिन सवारियां छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सवारियों पर हम ऊंचे मालूम पड़ते हैं। ऊंट इसलिए जीसस को ख्याल में आ गया होगा, जो भी अहंकार पर बैठे ऊंट पे बैठे और जानते हैं ऊंट की सवारी कैसी दुखद है। ऊंट की सवारी है अहंकार की सवारी, सवारी काफी बच के खाने पड़ते, ऊंचा ऊंचा होता रहता पूरे वक्त, लेकिन फिर भी ऊंचे तो मालूम पड़ते। ऊंट से नीचे उतरना पड़े, जो भी आपके पास है वो कर्म से मिला है, जो भी कर्म से जो भी मिला है उसकी सीमा मन है, आत्मा तक कर्म से मिला हुआ कुछ भी नहीं पहुंचता। समस्त समूह वासना का हो जाता है नष्ट, पुण्य पाप नाम के कर्म जल से उखड़ जाते हैं, तब यह तत्वमसी वाक्य परोक्ष ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है, तब पहली दफा अनुभव होता है कि क्या है ये ऋषि वचन तत्वमसी, वह तू ही है, दैट आर्ट थाउ, ये क्या है, इसका पहली दफा परोक्ष अनुभव होता है। परोक्ष अभी भी ये साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, अभी भी लगता है, स्पर्श होता है, अनुमान होता है, अभी भी सीधा साक्षात्कार नहीं होता। ये धर्म में की जब वर्षा हो जाती है ऊपर, जब चित्त बिल्कुल शून्य हो जाता है और दरिद्रता परम हो जाती है और आदमी भीतर एक शून्य हो जाता है, तब पहली दफा इस तत्वमसी महावाक्य का कि तू ब्रह्म ही है परोक्ष अनुभव होता है। गजब के लोग हैं उपनिषद के ऋषि, अभी वो कहते हैं अभी भी सीधा साक्षात्कार नहीं होता, अभी भी ऐसा होता है कि जैसे हम आंख बंद किए बैठे हों और किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई पड़े और हमें लगे कि कोई आता है, ये परोक्ष है। दिखाई ना पड़ता हो, अंधेरा हो और किसी के गीत की कड़ी गूंज जाए और हमें लगे कोई गाता है, दिखाई ना पड़े तो परोक्ष। परोक्ष का मतलब है अभी ठीक आमने सामने नहीं हुआ, अभी पास ही कहीं प्रतीति हो रही है। धर्म मेघ की वर्षा के बाद जो पहली घटना होती है वह तत्वमसी वाक्य की परोक्ष प्रतीति, कि ठीक कहा है ऋषियों ने, कि ठीक कहा है उपनिषद ने, कि वो जो वचन सुना था, वो जो श्रवण में सुना था, मनन में सोचा था, निधिध्यासन में साधा था, समाधि में एकता पाई थी, अब धर्म में की वर्षा पर पता लगता है ठीक ही कहा था, ठीक ही कहा था, ये परोक्ष है, किसी ने कहा था, आज पता चलता है, उसका स्वाद आता है, लगता है ठीक ही कहा था। परोक्ष ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है और फिर जब ये परोक्ष ज्ञान स्थिर हो जाता है और इसमें किसी तरह की कहीं कोई जरा सी भी लहर नहीं रह जाती विपरीत की, बिल्कुल निसंदिग्ध ठहर जाता है, आस्था बन जाती, तब फिर हाथ में रखे आंवले की तरह अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। और जब ये परोक्ष ज्ञान बिल्कुल स्थिर हो जाता है, प्राणों की पूरी शक्ति कहती है, अनुभव करती है कि ठीक कहा था ऋषियों ने, तत्वमसि वह तू ही है, जब इसमें कहीं भी कोई लहर भी इसके विपरीत नहीं रह जाती, जब पूरा पूरा ये असंदिग्ध मालूम होने लगता है, लेकिन परोक्ष, तब जैसे हाथ में कोई फल को रख दे आंवले के, ऐसा ये तत्वमसि वाक्य प्रत्यक्ष हो जाता है, अपरोक्ष हो जाता है। तब फिर ऐसा व्यक्ति ये नहीं कहता कि ऋषियों ने जो कहा ठीक, ऐसा व्यक्ति तब कहता है अब मैं कहता हूं तत्वमसि। परोक्ष ज्ञान में यह आदमी कहता कि ऋषियों ने कहा है इसलिए मैं कहता हूं कि ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान में यह आदमी कहेगा मैं कहता हूं ये ठीक है इसलिए ऋषियों ने भी ठीक ही कहा होगा। इस सब को ठीक से सामने ले लें। परोक्ष ज्ञान में प्रमाण था वेद, ऋषि, ज्ञान, शास्त्र, उससे ही श्रवण से शुरू की थी यात्रा, गुरु ने कहा था इसलिए ठीक ही कहा होगा, इस आस्था से खोज चली थी। परोक्ष था तब तक जब तक गुरु ने कहा है ठीक ही कहा होगा, और जो गुरु को जानता है वो निश्चित ही स्वीकार कर लेता है कि ठीक ही कहा होगा। बुद्ध के पास कोई रहा हो और बुद्ध कहे तत्वमसि, जिसने बुद्ध को जाना है वो सोच भी नहीं सकता, उसे कुछ भी पता नहीं है कि ये वाक्य ठीक है या नहीं, लेकिन बुद्ध को जानता है, ये बुद्ध जो कहते हैं वो प्रमाण हो जाता है। बुद्ध से कुछ अब प्रमाण निकल सकता है इसकी कोई बात ही नहीं बनती, इसका कोई ख्याल ही नहीं आता। जो गुरु के पास रहा, गुरु को जाना है, गुरु का वचन उसे प्रमाण है, लेकिन गुरु के वचन प्रमाण है, ये परोक्ष है, दूसरे के द्वारा आया है। पहली प्रतीत तो यही होगी जब बुद्ध का साधक पहुंचेगा समाधि में तो हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में सिर झुकाएगा, कहेगा ठीक कहा था, जो कहा था वो जाना। लेकिन जब ये प्रतीति और गहरी होगी और डूबेगा तो स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, तब वो कहेगा कि मैं जानता हूं कि मैं वही हूं और अब मैं कहता हूं कि चूंकि मेरा अनुभव कहता है कि ठीक है इसलिए गुरु ने जो कहा था वो ठीक है। अब प्रमाण बन जाता है व्यक्ति स्वयं, और व्यक्ति बन जाता है स्वयं सार्थ। ऐसे व्यक्तियों को हमने बुद्ध तीर्थंकर अवतार कहा है, जो व्यक्ति स्वयं प्रमाण है, जो यही कहते कि ऐसा वेद में लिखा है इसलिए सही, जो कहते हैं ऐसा मैंने जाना इसलिए सही, और अगर वेद भी ऐसा कहते हो तो मेरे जानने के कारण वेद भी सही, और अगर ऐसा न कहते हो तो वेद गलत, अगर ऐसा न कहते हो तो वेद गलत। अब कसौटी अपना ही अनुभव है, अब अपना ही निकट उपलब्ध हो गया है, ये सिद्धावस्था है। समाधि जब परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान में प्रवेश करती है तो सिद्धावस्था हो जाती है। ऐसी अवस्था को पाया हुआ व्यक्ति ही अगर लौटे समाधि में निदिध्यासन मनन प्रवचन तक तो हमें खबर मिलती है उस जगत की। इसलिए अगर हमने शास्त्रों को इतना आदर दिया है तो उसका कारण यही है कि वे उन लोगों के वचन हैं जिनके पास रहने वाले लोगों ने उनसे वचन सुने थे और पाया था कि ये जो आदमी कहता है गलत कह ही नहीं सकता, फिर भी ऐसे लोग कहते नहीं कि हम जो कहें मान लो। बुद्ध कहते हैं सोचना, विचारना, मनन करना, निदिध्यासन करना, साधना, और फिर तुम्हें अनुभव में आए तो ही मानना। बुद्ध कहते हैं मैं कहता हूं इसलिए मत मानना, बुद्ध कहते हैं इसलिए मत मानना, शास्त्र कहते हैं इसलिए मत मानना, खोजना। और जब स्वयं का अनुभव बन जाए तो गवाह बन जाए। समाधि को उपलब्ध व्यक्ति साक्षी हो जाता है समस्त शास्त्रों का, ज्ञाता नहीं साक्षी। पंडित ज्ञाता होता है, समाधिस्थ साक्षी होता है। पंडित कहता है कि शास्त्र ठीक कहते हैं क्योंकि तर्क में जस्ती है बात। समाधिस्थ कहता है शास्त्र ठीक कहते हैं क्योंकि मेरा भी अनुभव यही है। We discussed four steps. Right listening, right thinking, right meditation, and right samadhi. This sutra goes beyond samadhi. This sutra says samadhi is the door into the unknown. Not only the unknown, but the unknowable. It opens into the eternal, into the infinite. The moment you enter samadhi, you have to leave your mind behind. Your mind cannot enter samadhi. You can enter, but not your mind. Unless you can leave your mind behind, samadhi is not for you. Your luggage, thinking, memories, karmas, your all past lives, the whole luggage, which is your mind, has to be left behind. When you have left your mind behind, and this is the basic condition, the mind cannot enter samadhi, only you can enter. Why? Because you are at the center, mind is just the periphery. If you want to enter the center, you have to leave the periphery. You cannot go with the periphery to the center. If you insist that I will take my periphery, my circumference to the center, then you will remain on the circumference. Howsoever you endeavor, if you cling to the circumference, you can never enter the center. Entering the center means leaving the periphery, leaving the circumference. Mind is the circumference. This is a basic condition. Samadhi means entering into yourself without the mind. But if you enter samadhi without the mind, you cannot feel samadhi. This is the essence of this sutra. You cannot feel. You cannot think. Really, you cannot know what is happening because the knower, the instrument of knowledge, is the mind. It is as if you enter a garden. Your eyes are weak and you cannot see without your specs. And this is the condition. At the gate, you have to leave your specs. So you enter without specs. You enter the garden, but you cannot see because the very instrument of seeing is not with you. Mind is the instrument to know, to feel, to recognize. Mind has been left. So a man who enters samadhi enters totally ignorant, just like a child. Jesus says, be like children. Only then you can enter into my kingdom of God. Be like small children. At the door of samadhi, everyone is like a child with no mind. just being pure and simple and innocent. But then you cannot see what is happening. You cannot feel what is happening. The happening is there and you are too much in it and there is no distance. Mind creates the distance between the known and the knower. If there is no mind, the known and the knower merge. They become liquid. They enter into each other. And the distance cannot be maintained. And without distance, knowledge is impossible. So in samadhi, you know nothing. In samadhi, knowing the knower, the known, they all cease. And they become one also. Just one unity. Liquid, flowing. That doesn't mean that you are unconscious. You are conscious, fully conscious for the first time. But the consciousness is so much. The consciousness is so unlimited. The consciousness is so infinite. That it is impossible to make any differentiation. Who is the known and what is the known? You are immersed in it totally. As if a drop of water has become one with the ocean. That is a beautiful story, and Ramakrishna used to repeat it many times. He used to say that there was a great gathering near the ocean once. It's some religious festival. And a great crowd gathered there. Two pandits, two great scholars also came. And they begin to discuss whether the ocean is unfathomable. Are fathomable, whether the ocean can be measured or not measured. So they discussed around and around. Discussions are always around and around. You go on beating the bush around and around. No discussion goes deep and direct. It cannot. One simple man, just a villager, an innocent one, he said, I have been listening to your discussion. Days have passed and there seems to be no conclusion. And I think I am an ignorant man. I suggest that unless you go deep into the ocean, how can you decide whether it is fathomable or not? You remain on the bank and you go on discussing. And you go on arguing, quoting scriptures and authorities. But I ask a simple question, have you been to the ocean? Those two scholars said, don't interfere. You don't know scriptures. But the poor man said, I know the ocean. I need not know your scriptures. You are talking about the ocean. What is the need of scriptures to be brought in? I suggest, take a jump. Go to the bottom. And then come back and tell us. So those two scholars jumped into the ocean. But they never came back. Ramakrishna says they never came back because those two scholars were really men of salt. So the more they went in, they began to melt. They were just salts. Their bodies were made of salt. In a way, it is not
very inconceivable. Our bodies are made of ocean water. They are salty. Really, in your body there is 75% water. 75%. And the water is just the water which is found in oceans. The proportion of salt in our bodies is the same as it is in the ocean water. Because man is just a developed form of fish and nothing else. So this story is not very absurd. Man comes from ocean and is salty. So those two scholars were men of salt. Their bodies were made of salt. They came out of ocean. Everyone has come out of ocean. Now science says that man is out of ocean. Just a developed form of fish. Nothing else. And who can say whether developed or not? If you ask the fishes, they cannot say. They will say, fish is gone astray. Out of ocean. Gone astray. They cannot say developed. There seems to be no reason. Only in man's reason it seems man is developed. In fishes' reason, it cannot seem so. They never came back. The crowd waited and waited and waited. Ramakrishna used to say, they cannot come back. Because the deeper they went, the more they melted. And when they reached to the bottom, they were no more. So who can come? And who can stay? When you leave mind behind, you leave the bank. You take a jump into the ocean. And you are part of the ocean. Just the salt. When you enter into samadhi, you take a jump into the ocean of consciousness. And you are consciousness. So when consciousness takes a jump into greater consciousness, infinite consciousness, it becomes one. The division is lost. You cannot experience anything. You experience the absolute, but you cannot say it is an experience. You cannot feel it as an experience. This sutra says, when the consciousness comes back to the mind again and looks from the specs of the mind retrospectively, what has happened? Then it infers. So all knowledge about God is inference. Those who have known, they too have to think it, remember it, live it back in memory, through the mind, then they can say what has happened. Belief, existence, consciousness, Satchidanand. This is not the experience itself. It is mind looking at the experience. That's why the division. There was no division in the experience itself. Mind divides into three. And remember, mind divides everything into three. Three is the basic division of the mind. Anything it divides into three. Look at the world. All the divisions, and you will find basic division is always of three. Always three. Not only in religion, but in science also. Now they say, when the atom was split, now they say, the basic unity of atom is constituted of three elements. Electron, neutron, positron. You may call them Brahma, Vishnu, Mahesh, Trimurti, the three figures. Basic division of the mind is three. Look from the mind retrospectively, mind infers what has happened. Existence has happened. Consciousness has happened. Bliss has happened. But this is the inference. This sutra says, back from that peak of ecstasy, back to the grounds, you look again. Now you remember. So all the scriptures, all that has been said about the ultimate truth is inference of the mind from memory, remembered. In samadhi, mind is not there. That's why you become spontaneous. Mind is the instrument which always destroys spontaneity. Mind always brings past into the present, and that destroys spontaneity. This sutra, this part of the sutra is also to be understood before we enter into meditation. A spontaneous act is never from the mind. A spontaneous act always happens in the present. If it happens through the mind, then the past has come in. I say something to you, you react. The reaction is from the mind. You think about it. You bring your past memories, your knowledge, your experiences, and then you react accordingly. Then this act is not spontaneous. This act is dead. It is not alive. Reaction is dead, never alive. Response is alive and is spontaneous. I say something to you and you respond immediately, without bringing the past in, without bringing the mind in, you respond. For example, if you ask something to a Buddha, to an enlightened one, he will get confused. If you ask the same question today and the same tomorrow and day after tomorrow, you are not going to get the same answer. It is impossible for a Buddha. He is not reacting. He is not a parrot. He responds. You ask the question and immediately his consciousness responds it. It is not a reaction of the mind. It is an encounter, direct, immediate. Every moment, you go on asking the same question, but the same answer will not be coming. Repetition is through the mind. A spontaneous consciousness is always new and fresh. This sutra says, samadhi brings you back to your center of spontaneity. That spontaneity is known in the Upanishadic terminology as dharma. Dharma means your natural spontaneous being. Spontaneous natural being, undistorted by the mind. Your natural spontaneous mirror, undistorted by anything, pure and innocent. Through samadhi, you become spontaneous. Really, through samadhi, you become religious. Before that, you can belong to a religion, but you are not religious. You can be a Christian, you can be a Hindu or a Mohammedan, but you are not religious. You belong to a certain organization, a certain church, a certain sect. This belonging is mental. When you enter samadhi for the first time, you come into the world of dharma, real religion. Now you become spontaneous. You become natural. Nothing is imposed from the mind. You act in totality, moment to moment. Your acts become atomic. always new and fresh and young. Whatsoever you do now is always fresh. This freshness of being is known as dharma. This is what a religious mind is. And unless you become a religious mind in this way, through samadhi, you cannot know what is meant by this Mahavakya, Tattvamasi, that art thou. When you become spontaneous, then you know you are that. In the ultimate, with the ultimate, now you are one. Now your finite being is not finite. And now the divine is not far away. Now you are divine, and the divine is you. The duality is lost. You become for the first time a knower that this sutra of Tattvamasi that art thou is real, authentic. Now you can become a witness. Now you can say that this is so because I have known it. And unless you can say, I have known it, nothing is worth. Just a few days before, a theologian came to me and he began to talk about God. I asked him again and again, please tell me, have you known? Have you seen? But he began to quote Bible. He began to quote scriptures. And he says, this is written there, and that is written there. I told him, it may be written. I accept that it is written there, but that's not my question. I'm asking whether you have known it. But he will not answer the question. He will again repeat that Jesus has said this. In the New Testament, he opened the book. He had a book of New Testament in his pocket. He opened the book and he began to read. I told him again and again, don't read it. I have read it already. So I know what is written in it. Tell me directly, have you seen? Have you realized? But there was no answer. If someone asks you, have you seen the divine? And if you go on quoting Upanishads, that's stupid. Say yes or no. And you cannot deceive, because there is no question of deceiving anyone. Say to yourself whether you have seen it, known it, realized it. If you have not, then start on a long journey from right listening to right thinking, from right thinking to right meditation, from right meditation to right samadhi. Then only you will be able to know. And unless you know, the whole knowledge of the world is futile. Unless you know,